नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने एशियाई खेलों में महिला कबड्डी में जीत के साथ 100 पदकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर भारतीय एथलीटों को बधाई दी। वे मंगलवार को खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री उत्तराखंड में टिहरी जिले में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमास के हमले के बाद इसराइल ने युद्ध जैसी स्थिति की घोषणा की और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। चीन के हांगझोउ में हो रहे एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। खेलों के 14वें दिन भारत ने 100 पदक प्राप्त करने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। दोनों खिलाड़ियों के ने फाइनल में चुई लुंगसुलियो और किम वुनहू की जोड़ी को 21-18 21-16 से पराजित किया। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में बैडमिंटन की पुरुष डबल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कबड्डी के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम का सामना ईरान से हो रहा है। दोनों ही टीमें 29-29 की बराबरी पर हैं। पुरुष क्रिकेट के फाइनल में भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच फिलहाल बारिश के कारण रुका हुआ है। इससे पहले भारत ने आज टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 5 विकेट पर 112 रन बना लिए थे। कुश्ती की बात करें तो पुरूषों की फ्री स्टाइल के लिए 86 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पुनिया ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब उनका मुकाबला 3 बार के विश्व चैंपियन हसन यजदानी से होगा। महिला हॉकी में कांस्य पदक के लिए प्लेऑफ मैच में भारत और जापान की टीमें आमने सामने हैं। सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स में अनिकेत पटेल अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। भारत 26 स्वर्ण 35 रजत तथा 40 कांस्य सहित कुल 101 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है और यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पेश है खेल डेस्क से हमारे संवाददाता निखिल कुमार की रिपोर्ट।
चीन के हांगझोउ में हो रहे एशियाई खेलों में शुरुआती 13 दिन में 95 पदक हासिल करने वाले भारत ने 14वें दिन 100 का जादुई आंकड़ा छुआ और पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एशियाई खेलों के इतिहास में भारत ने पहली बार पदकों का शतक लगाया है। भारत की झोली में आज सुबह 5 पदक आए। कम्पाउंड तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवतलिन ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला कबड्डी टीम भी स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए कंपाउंड तीरंदाजी के फाइनल मैच में दक्षिण कोरिया की सो सी को 149-145 के अंतर से पराजित किया। ज्योति ने आज की सफलता के बारे में अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए।
गोल्ड मेडल भी आए हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ एंड थैंकफुल हूँ बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एनकरेज किया थ्रू आउट माई जर्नी। एंड गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहूंगी क्योंकि बिना उनके सपोर्ट का ये नहीं हो पाता, तो थैंक यू सो मच।
तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड के फाइनल मैच में ओजस देवतले ने सोने के तमगे पर कब्जा किया और इसी मैच में उप विजेता रहते हुए अभिषेक वर्मा ने रजत पदक हासिल किया। हालांकि आज का पहला पदक कंपाउंड तीरंदाजी में आया था जब अदिति ने महिला सिंगल्स में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस बीच महिला कबड्डी के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को हराकर देश के लिए 100वें पदक पर कब्जा करते हुए स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिलाओं ने लगातार 4थी बार एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में 100 पदक हासिल करने के लिए सभी एथलीटों को दी है।
हुई मेडल्स की बौछार इस बार 100 पार। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी।
रोलर स्केटिंग की हम बात करें तो साई समिता अकुला प्रतियोगिता के फाइनल में आज 4थे स्थान पर रहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए भारतीय एथलीटों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में भारत के लिए एक यादगार उपलब्धि है। श्री मोदी ने कहा कि 100 पदकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर हर देशवासी रोमांचित है। उन्होंने कहा कि हर असाधारण प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और भारतीयों में गर्व की भावना पैदा की है। श्री मोदी ने कहा कि वे एशियाई खेल में शामिल भारतीय दल से मंगलवार को मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता और कौशल का प्रदर्शन किया और देश को उन पर गर्व है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आशा व्यक्त की है कि ये खिलाड़ी आगामी प्रतियोगिताओं में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। G20 की भारत की अध्यक्षता पर चर्चा के लिए विदेश मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि G20 के आयोजन में भारत की सफलता की सबने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी दृष्टिकोण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हिस्सा ले रहे हैं। गृहमंत्री आज देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में भी शामिल होंगे। इस कांग्रेस में 5G, मादक पदार्थों, आंतरिक सुरक्षा तथा सोशल मीडिया की चुनौतियों के दौर में और सामुदायिक स्तर पर पुलिस व्यवस्था जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के तत्वाभार में किया जा रहा है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के तोंडी बंदरगाह पर सागर परिक्रमा के नवे चरण की शुरुआत की। श्री रूपाला ने कहा कि तमिलनाडु मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्य हैं और ये देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि मछुआरों को जल्द ही किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले और नौका बनाने वाले कामगार अब विश्वकर्मा योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोनों मंत्रियों ने तंजावुर जिले में मानल मेलकुड्डी मत्स्यपालक सहकारिता समिति का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा कि सागर परिक्रमा योजना की शुरुआत 6 महीने पहले गुजरात में हुई थी और इसका दायरा प्रायद्वीप क्षेत्र के सभी तटवर्ती जिलों तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का नवा चरण सोमवार को चेन्नई में सम्पन्न होगा। इस योजना में मत्स्य पालन संबंधी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज कहा कि त्वरित कार्यबल RAF की कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने की अनोखी ताकत और योग्यता इसे एक सर्वोत्तम बल बनाती है। श्री राय ने नई दिल्ली में RAF के 31वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि RAF कड़े प्रशिक्षण के बल पर भीड़ और दंगों से उत्पन्न स्थिति से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि RAF ने जम्मू कश्मीर, मणिपुर और नूह में हिंसा की घटनाओं से निपटने में अपनी कुशलता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि RAF ने कम्बोडिया, लाइबेरिया और हैती में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिक्किम में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या 27 हो गई है और 141 लोग लापता हैं। मृतकों में थलसेना के कर्मी भी शामिल हैं। राज्य में 4 अक्टूबर को तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए थे। बाढ़ से 1100 से अधिक मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। अब तक 2413 लोगों को बचाया जा चुका है जबकि 26 लोग घायल हैं। लगभग 6875 लोगों को 22 राहत शिविरों में रखा गया है। तीस्ता नदी में बाढ़ के कारण 13 पुल बह गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल मुंबई के गोरेगांव में एक आवासीय इमारत में आग लगने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। उन्होंने घायलों का इलाज सरकारी खर्चे पर करने की भी घोषणा की है। श्री शिंदे ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा केयर सेंटर का दौरा किया और गोरेगांव के उन्नत नगर में जय भवानी SRA इमारत में आग लगने से घायल लोगों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि घटना की गहनता से जांच की जाएगी और रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कनाडा में कल एक विमान दुर्घटना में 2 भारतीय प्रशिक्षु पायलटों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। दोनों प्रशिक्षु पायलट अभय गाडरू और यश विजय रामगाडे मुंबई के थे। खबरों के अनुसार 2 इंजन वाला यह हल्का विमान वैंकूवर के पास चिलीवाक शहर में पेड़ों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। फलिस्तीन के हमास लड़ाकों की ओर से आज गजा पट्टी से रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल ने युद्ध जैसी स्थिति की घोषणा की है। हमास ने दक्षिणी इसराइल में हजारों रॉकेट दागे हैं। ये इसराइल पर हमास की ओर से पिछले कई वर्षों में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। खबरों के अनुसार हमास के बंदूकधारियों ने इसराइल में घुसकर एक महिला की हत्या भी की है और 15 अन्य को घायल कर दिया है। पूरे इसराइल में युद्धक विमानों के सायरन गूंज रहे हैं। इसराइल की सेना ने इस बात पर पुष्टि की है कि गजा सीमा के पास कई स्थानों पर घुसपैठ हुई है। इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और नागरिकों से घर में ही रहने को कहा गया है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल की आज दोपहर बाद राजधानी तेल अवीव में सेना मुख्यालय में बैठक हो रही है। श्री नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि देश में सुरक्षा स्थिति का आकलन किया जा रहा है। भारत ने इसराइल में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। इसराइल में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से चौकसी बरतने और अनावश्यक आवाजाही से बचने तथा सुरक्षित स्थान के पास रहने की सलाह दी है। दूतावास ने आपात स्थिति में संपर्क के लिए एक टेलीफोन नम्बर और एक ईमेल जारी किया है। टेलीफोन नम्बर है 9723522648। नम्बर एक बार फिर सुन लें, 9723522648 और ईमेल है cons1.telaviv@mea.gov.in। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के असाधारण कार्यों की बदौलत ही भारत आज खाद्यान्न की कमी वाले देश से ऊपर उठकर खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सका है। अपने ब्लॉग narendramodi.in में उन्होंने स्वामीनाथन को याद करते हुए कहा कि राष्ट्र ने एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्तित्व को खो दिया है जिनका योगदान हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि 1960 की शुरूआत में जब भारत में खाद्यान्न के संकट से जूझ रहा था, तब स्वामीनाथन की प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता से देश में कृषि के क्षेत्र में खुशहाली का एक नए दौर का शुरुआत हुई। श्री मोदी ने कहा कि विशेषकर गेहूं के क्षेत्र में प्रोफेसर स्वामीनाथन के कार्य से गेहूं उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। प्रोफेसर स्वामीनाथन को इसी उपलब्धि के कारण हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया आज जिस मिलेट्स या श्री अन्न की चर्चा कर रही है, प्रोफेसर स्वामीनाथन ने उस पर 1990 के दशक में ही चर्चा की शुरूआत कर दी थी। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलहु हसन कल से भारत की 3 दिन की यात्रा पर आ रही हैं। यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे मंगलवार को नई दिल्ली में एक व्यापार और निवेश बैठक में भी भाग लेंगी। ICC एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बांग्लादेश के साथ खेलते हुए अफगानिस्तान ने 64 ओवर में 2 विकेट पर 27 रन बना लिए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 157 रनों का लक्ष्य दिया है। आज एक अन्य मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका के साथ खेलते हुए 44 ओवर में 1 विकेट पर 29 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने एशियाई खेलों में महिला कबड्डी में जीत के साथ 100 पदकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर भारतीय एथलीटों को बधाई दी। वे मंगलवार को खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 52वीं बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री उत्तराखंड में टिहरी जिले में आज केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमास के हमले के बाद इसराइल ने युद्ध जैसी स्थिति की घोषणा की। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।